नमस्कार भारत, तारीख 4 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। चीन की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की क्या है खूबियां और ये किन देशों के लिए है खतरे की घंटी?
काफी लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है और जो क्षमता है ये बढ़ जाता है, अमेरिका भी टारगेट हो सकता है, भारत भी इसके रेडियस में जरूर आएगा।
मध्य प्रदेश के विदिशा में ईसाई मिशनरी के एक कॉलेज में भारत माता की आरती पर विवाद, पुलिस अधीक्षक बोले,
जो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं तो हम नहीं होने देंगे, लीगल प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।
और दुनिया जहान में उस वजह की पड़ताल जिसे लेकर विश्व के कई हिस्सों में नजर आती है अलगाववाद की भावना।
राष्ट्र राज्य की इकाई अपने राष्ट्रहित को तर्कसंगत साबित करने के लिए बहुमत का सहारा लेती है और अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन होता रहता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में आज सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में दोषी करार लालू प्रसाद फिलहाल रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। इस मामले में अदालत को कल सजा का ऐलान करना था लेकिन इसे आज के लिए टाल दिया गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बेनन की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा है कि जब बेनन को नौकरी से निकाला गया तब न सिर्फ उन्होंने अपनी नौकरी खोई बल्कि उनका दिमाग भी फिर गया। बेनन का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। बेनन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर और उनके दामाद जेड कुशनर की रूसी वकील के साथ साल 2016 में हुई मुलाकात को धोखाधड़ी और राष्ट्र विरोधी बताया है। बेनन का यह बयान एक नई किताब में छपा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने इन आरोपों का खंडन किया है।
I think that is a ridiculous accusation and one that I'm pretty sure we've addressed many times from here before. And if that's in reference to comments,
मेरे ख्याल से ये एक हास्यास्पद आरोप है और ये एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में रूस और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मिलीभगत को बिल्कुल झूठ बताया था तो मैं उसी को सच मानूंगी। अगर कोई लगातार बदलता रहा है तो वो स्टीव हैं। निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति या अमरीकी प्रशासन नहीं है। ये थे व्हाइट हाउस प्रवक्ता सारा सैंडर्स के शब्द। ईरानी प्रशासन ने देश में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी का कहना है कि उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सैन्य ताकत लगा दी है। जाफरी ने इन प्रदर्शनों को नया राजद्रोह कहा। उन्होंने ऐलान किया कि अब अशांति खत्म होने की कगार पर है। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों की खबरें लगातार आ रही हैं लेकिन जमीन पर हालात अब कैसे हैं ये कहना मुश्किल है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव अभियान के दौरान फेक न्यूज के पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाएगी। मैक्रो के मुताबिक झूठे प्रचार प्रसार से एक उदार लोकतंत्र को बचाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है।
En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes.
जैसा कि आप जानते हैं चंद पैसों के बदले सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का जोरदार प्रचार किया जाता है और खबर छापने वालों का नाम तक गुप्त रखा जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि प्लेटफॉर्म प्रायोजित सामग्री को लेकर साफ रहे ताकि जो इन खबरों को छाप रहा है या छपवा रहा है उसका नाम सामने आए। इसके साथ ही वेबसाइट्स पर ऐसी सामग्री को सीमित करने की भी जरूरत है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। कंप्यूटर के लिए चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल के कुछ डिजाइन्स में बड़ी खराबी पाई गई है। जानकारों का मानना है कि लाखों कंप्यूटरों पर इसका असर पड़ेगा। इंटेल चिप की डिजाइन की गड़बड़ी में की वजह से माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स और एप्पल को अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा। इंटेल कंप्यूटर चिप में पाई गई कमी के चलते हैकर्स आसानी से कंप्यूटर की सुरक्षित जानकारी चुरा सकते हैं। फलिस्तीन का कहना है कि वो गजा में सप्लाई की जाने वाली बिजली के लिए इसराइल को भुगतान करने के लिए तैयार है। फलिस्तीन ने इसराइल से बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए कहा है। फलिस्तीन के प्रधानमंत्री रामी अल हमदलाह ने कहा है कि बिजली की कमी से हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी ने किसानों और चरवाहों के बीच हुई हिंसक झड़पों की निंदा की है। बुहारी का ये बयान नाइजीरिया के शहर मकुरदी में हिंसक झड़प के विरोध में उतरे सैकड़ों लोगों के बाद आया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। नए साल के पहले दिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर सवाल उठाया, उसी दिन खबर आई कि पाकिस्तान ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद पर सख्ती की है। हाफिज सईद के संगठन के चंदा लेने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहत जावेद से बातचीत में कहा कि जमात उद दावा के खिलाफ कार्रवाई का संबंध अमरीका से नहीं है। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई ऑपरेशन रद्द उल फसाद के तहत की है। इसके बाद बीबीसी उर्दू के संवाददाता शफी नकी जामई ने हाफिज सईद से बात की और पूछा कि ऑपरेशन रद्द उल फसाद में दहशतगर्द संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या पाकिस्तान सरकार ने उन्हें दहशतगर्द करार तो नहीं दे दिया? इस पर हाफिज सईद ने क्या कहा, उसका एक हिस्सा सुनिए।
मैं तो साफ कहता हूँ कि अमरीकी दबाव है और साथ इंडिया की तरफ से ये सारी बातें हो रही हैं और ये उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं वजीर दिफा साहब। हम ये कहते हैं कि आप जरा अदालतों में आए ना, हमारे सामने कानून के साथ बात करें। हमारे खिलाफ जो कुछ भी है वो इंडिया की तरफ से है। अलबत्ता ये हो सकता है कि इंडिया अमेरिका को उकसाए। अमेरिका के साथ हमारा झगड़ा ही कोई नहीं है। अमेरिका को मसला है हक्कानी नेटवर्क से और इंडिया को मसला है हमसे। तो इंडिया और अमेरिका जब आपस में मिलते हैं तो ये गडमड कर देते हैं।
भारत हाफिज सईद को साल 2008 में मुंबई पर हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड मानता है। हाफिज सईद से पूरी बातचीत आप अब से कुछ वक्त बाद bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में आप ये पूरी बातचीत सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात भारत के एक और पड़ोसी यानी चीन की। नए साल में रिपोर्टें आई कि चीन ने नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया गया कि यह मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। इस मिसाइल की और क्या खूबियां हैं और क्या यह दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए किसी तरह का खतरा है? बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर से यही सवाल किया।
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों मिसाइलों का लक्षण को एक प्रकार से शामिल करते हुए ये एक नया प्रकार का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाया है, HGV जिसको ये कहते हैं।
चीन का कहना यह है कि अमेरिका तक ये मिसाइल मार कर सकती है, क्या भारत को कोई खतरा हो सकता है?
ये बैलिस्टिक मिसाइल के तरफ नहीं चलती है जब ये काफी लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है और इसकी वजह से खतरा थोड़ा बढ़ता है, यानी कि इसकी जो ऑफेंसिव जो क्षमता है ये बढ़ जाता है। और जिस प्रकार से अमेरिका भी टारगेट हो सकता है चीन के मिसाइल से, कह सकते हैं कि भारत भी इसके रेडियस में जरूर आएगा। पर अभी तक जो चीन ने टेस्ट के बारे में जो जानकारी हुआ है ये इस वक्त केवल 3000 किलोमीटर से कम ही है। और इसकी सबसे खास लक्षण ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसे उससे थोड़ा कम ऊंचाई से ये लो ऑल्टीट्यूड पे टारगेट को अक्वायर करती है। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए शक्तिशाली देशों ने मिसाइल डिफेंस बनाया है। ये जो HGV है इसको मिसाइल डिफेंस से रोकना ये काफी कठिन होगा।
अगर कोरियाई प्रायद्वीप में चल रहे तनाव को देखें तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया है और अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया और जापान है। साथ ही चीन पर अमेरिका आरोप लगाता आया है कि उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए वो मना नहीं पाया है। ऐसे में इस मौजूदा तनाव के बीच पूरे प्रायद्वीप का घटनाक्रम चीन के परीक्षण के बाद क्या रूप ले सकता है?
मुझे नहीं लगता है कि चीन का जो HGV इसका असर तुरंत नहीं होगा। पर जहां तक अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव है, क्योंकि आप देखिए अभी ट्रंप साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को उन्होंने जो घोषित किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चीन के साथ वो बहुत ही असंतुष्ट हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये एक प्रकार का काफी खतरनाक शतरंज का खेल भी है कि दोनों देश अपनी जो सीमा पार क्षमता है, जैसे मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को एक प्रकार से सिग्नल कर रहे हैं। चीन के पास ये भी उसी प्रकार का HGV या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की क्षमता का उन्होंने, जो कि अभी तक माना जाता था कि केवल अमेरिका तथा रूस के पास था, यानी चीन जो है इस खास क्लब के तीसरा मेंबर बन गया है। पर जहां तक ये चीन, रूस और अमेरिका के बीच में ये जो एक प्रकार का छोटा सा आर्म्स रेस है, मुझे नहीं लगता है कि ये सहमति जल्दी बन सकता है। चीन अमेरिका से चिंतित है, अमेरिका एक प्रकार से रूस के क्षमता जो परमाणु हथियार से वो चिंतित है, और सच्चाई ये भी है कि रूस चीन के जो इस वक्त उभरता हुआ लक्षणों को देखते कि रूस भी चिंतित है चीन के बारे में। तो ये एक बहुत अजीब प्रकार का त्रिकोण बना है।
चीन की बढ़ती ताकत कहीं ना कहीं दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रही है। जानकारी दे रहे थे उदय भास्कर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
रुख भारत का और खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से। विदिशा में भारत माता की आरती को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ईसाई मिशनरी के कॉलेज में आरती करने का ऐलान किया है। कॉलेज प्रशासन इसका विरोध कर रहा है और मामला अब पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गया है। सुनिए शुरय नियाजी की रिपोर्ट।
सेंट मैरी PG कॉलेज ईसाई मिशनरी विदिशा में संचालित करती है। इस कॉलेज में पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर भारत माता की पूजा करने की मांग करने लगे। अब इन संगठनों ने धमकी दी है कि वो गुरुवार को कॉलेज में पहुंचकर भारत माता की आरती करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चे के विदिशा के अध्यक्ष दीपक तिवारी सवाल करते हैं कि क्या इस देश में किसी भी स्थान पर भारत माता की आरती नहीं की जा सकती।
हमने ये बता रहा था भारत माता की आरती का कार्यक्रम हमने जब माननीय सरपंच चालक जी आ रहे हैं उससे पहले हर कॉलेज स्कूल में भारत माता की आरती कर रही AVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो इस तरह स्कूल और कॉलेज में लगभग हो गई हो रही भाई साहब। लेकिन सेंट मेरी में करने गए तो वहाँ के प्रिंसिपल जो फादर जोसेफ है, शायद नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत माता की आरती में विश्वास नहीं करते। तो जब उन्होंने मना करा तो वो एक नया इश्यू बन गया बहस का, बोले कि हम नहीं करेंगे। फिर दोबारा हम लोग मिलने गए, कई लोग इसमें मैं तो नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं मिलने तो बताया कि ऊपर से जब तक हमारे पास नहीं आएगा भारत माता की आरती काम नहीं करने देंगे।
वहीं ईसाई संस्था ने इस मामले में प्रशासन से मदद मांगी है। संस्था ने सुरक्षा की मांग की है। ईसाई संस्था के PRO फादर बीजू टोटनकरा कहते हैं,
सर हमें भी ये समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रहे हैं। कि हमें भी समझ में नहीं आता क्या अचानक हो रहा है। कन्वर्शन की बातें कभी बोलते हैं लेकिन कोई कन्वर्शन होता ही नहीं है। हम लोग कन्वर्शन करते भी नहीं है। लोगों को शिक्षित करना और विकसित करने हमारा योगदान बहुत ही ज्यादा योगदान हम दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को इससे पसंद नहीं आता।
प्रशासन भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। विदिशा के पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने बताया,
जो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कोई प्रोविजन लीगल प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अगर रेडी नहीं है और वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर फॉलो किया जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन अपना वहाँ पे फोर्स लगाएगा और जो सही स्टैंड है वही उसी पर टिकेंगे। अगर कोई जना बदमाशी करके जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ।
मध्य प्रदेश में ईसाई समुदाय एक बार फिर अपने आप को हिंदू संगठनों के निशाने पर पा रहा है। इससे पहले पिछले माह दिसंबर में सतना पुलिस ने एक ईसाई को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि ईसाइयों का एक दल गांव में एक हिंदू व्यक्ति को पैसा देकर धर्म परिवर्तित करवा रहा था। ईसाई समुदाय ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा था कि वो लोग कैरोल सिंगिंग के लिए गांव में गए थे। विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। ईसाई मिशनरी के लोग मान रहे हैं कि प्रशासन इस क्षेत्र में किसी भी तरह से विवाद की स्थिति पैदा नहीं होने देगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे शुरय नियाजी। उधर महाराष्ट्र के कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में कल आयोजित बंद का मुंबई सहित कई शहरों में असर देखा गया। शाम को दलित संगठनों ने बंद का ऐलान वापस ले लिया, लेकिन उनकी मांगें बरकरार हैं। कल के बंद के असर और दलित आंदोलन को लेकर आज की संभावित स्थिति जानने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दास ने BBC मराठी संवाददाता मयूरेश कोनूर से बात की।
जी कल दिन भर
पूरे महाराष्ट्र में बंद पुकारा था दलित संगठनों ने, दलित पार्टियों ने, और सारे उसमें शामिल हो गए थे। दिन भर महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों पे कुछ जमाव की हिंसा की घटनाएं जो है सामने आई, और सबसे ज्यादा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिट हुआ दिखाई दिया, और सेंटर हमेशा की तरह मुंबई रहा। मुंबई में अलग जगह पे बताया गया है अब तक की 20 से भी ज्यादा जो बसेस हैं बेस्ट की हैं उनका नुकसान हुआ है, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स का भी नुकसान हुआ है। रेलवे लाइन पर कुछ जगह लोग पटरी पे निकल आए तो फिर हार्बर लाइन और कुछ दिक्कत हुई लोगों को, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो गया। स्कूलों को क्या करना है, स्कूल बस एसोसिएशन ने पहले तय किया था कि वो नहीं सर्विस देंगे, लेकिन बाद में सामान्य हो जाने की परे के बाद फिर स्कूलों तक भी बसेस जाना शुरू हो गया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शाम तक अलग अलग जगहों पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है उनको टारगेट किया गया था। पुणे हो, जहां पे भीमा कोरेगांव भी आता है, वहां की जगह वहां पे भी टेंस था, लेकिन पुलिस दिन भर शहर में दिखाई दिए। और नासिक हो, मराठवाड़ा का कुछ भाग हो, नागपुर हो, इसमें भी कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन शाम के बाद जब प्रकाश अम्बेडकर ने ये बंद खत्म कर देने की जब घोषणा की तब सामान्य जीवन वापस पटरी पे आ गया। और अगर आज की हम माने तो सामान्य जनजीवन ही रहेगा, सब ऑफिस जा पाएंगे, लेकिन जो मांगे हैं दलित संगठनों की वो बरकरार रहेगी।
इस सिलसिले में कुछ FIR भी दर्ज हुई है।
जब ये घटना सामने आई और उसका राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हुई तब पुणे में पिंपरी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुआ था, और भीमा कोरेगांव का जो घटना घटी उससे पहले कुछ वहां के नजदीक वड़ू नाम का एक गांव है वहां पे एक विवाद चल रहा था, उसके बारे में कुछ कुटुंब को उकसाया गया। इसका ऐसी जब कंप्लेंट आ गई तो मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े, ये अलग अलग संगठनाओं के प्रतिनिधि हैं, हिंदुत्ववादी संगठनाएं इनकी, संभाजी भिड़े सांगली से है, महाराष्ट्र के ही सांगली से, और मिलिंद एकबोटे पुणे से है, उनके ऊपर एट्रोसिटी और राइटिंग के तहत FIR दर्ज हुआ था। और जब आज प्रकाश अम्बेडकर ने ये बंद पीछे ले जाने की घोषणा की तब उन्होंने कहा कि ये जो दोनों हैं क्या आगे कार्रवाई हो, ये इसका जो है दलित संगठनाएं जो है वो फॉलो अप लेगी। और फिलहाल मुख्यमंत्री ने फिर से कहा है कि उन्होंने जुडिशियल कमीशन जो है वो तय किया है इसकी में इंक्वायरी करेगा, लेकिन फिर आगे क्या होगा इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
जानकारी दे रहे थे मयूरेश कोनूर। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। विकास त्रिवेदी और पायल भोयन अखबारों के पुलंदे के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी पायल
जी, वात्सल्य कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का टिकट न दिए जाने की खबर सभी अखबारों में छाई हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के चयन से पार्टी के भीतर कलह शुरू।
जबकि आम आदमी पार्टी का ये बयान था कल कि इनका नाम तो पार्टी की तरफ कभी था ही नहीं, मीडिया में ही बातें चल रही थी।
जी बिल्कुल। और आगे दैनिक जागरण अखबार लिखता है कि महीने भर पहले कांग्रेसी रहे सुशील गुप्ता बने आप प्रत्याशी। साथ ही एक अलग कॉलम में अखबार ने कुमार विश्वास के बयान को भी छापा है जिसमें वो चुने गए दो प्रत्याशियों को महान क्रांतिकारी बता रहे हैं।
यानी पायल, कुमार पूरे विश्वास के साथ आप पर तंज कर रहे हैं, और अगर अखबारों को भी देखा जाए तो जो कुमार विश्वास का नाम है उसके साथ वर्ड प्ले अखबारों ने अपने अपने शीर्षकों में किया है। अगर इस खबर से अलग जाएं तो पायल, राज्यसभा में पेश हुए 3 तलाक बिल की खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर अपनी जगह दी है, और इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर है विपक्ष ने 3 तलाक बिल को लटकाने का अपना पैतरा बदला, सरकार ने बताया ढोंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर पर हेडिंग दी है राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार। जबकि दैनिक जागरण अखबार ने हेडिंग दी है तत्काल तलाक बिल में विपक्ष बना रोड़ा। और जनसत्ता ने भी हेडिंग दिया है जो मैं बात कर रहा था कि कुमार विश्वास के नाम में जो विश्वास है उसके साथ वर्ड प्ले हुआ, तो उन्होंने दिखा है अपनों पर आपको नहीं विश्वास।
जी, और लालू प्रसाद यादव जिनका फैसला कल आना था उन्हें लेकर अखबारों में कोई जगह है?
अखबारों में क्योंकि वो कल आना था तो कल के में तो थी, तो द हिंदू अखबार में देखे तो उन्होंने ऊपर छोटी सी दी है कि आज जो है सजा का ऐलान हो सकता है।
जी
वत्सल, एक और खबर है जो सभी अखबारों में छाई हुई है, जो दलित आंदोलन कल हुआ था और उसके बाद जो महाराष्ट्र बंद की खबर थी वो बुधवार को जो बुलाई गई थी दलित बंद की खबर, वो ज्यादातर अखबारों में प्रमुखता से लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने तस्वीर छापी है जिसमें प्रदर्शनकारी रेल पटरी पर बैठे नजर आ रहे हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडिंग दी है दलित आंदोलन खत्म लेकिन महाराष्ट्र में तनाव बरकरार। अमर उजाला लिखता है कि संसद में बोली सरकार, फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है कांग्रेस। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को RSS के एंगल से लिखते हुए हेडिंग दी है कि दलित प्रदर्शन से ठप पड़ा प्रदेश, RSS ने भारत तोड़ो ब्रिगेड को जिम्मेदार ठहराया।
इसके अलावा अगर बात करें तो अमर उजाला अखबार में एक दूसरी खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर अंदर तक घुसे चीनी सैनिक
जी,
और ये उन्होंने इसको लीड बनाया है। और अखबार लिखता है कि 72 दिन चला डोकलाम विवाद अब शांत हुआ ही था कि चीन ने फिर से घुसपैठ कर दी। और अखबार लिखता है कि जो सैनिक घुसे थे तो उनका कुछ सामान जो है वो यहाँ रह गया, तो उसमें कुछ औजार मिले हैं जो सड़क बनाने के औजार हैं।
अब मैं खबर दैनिक जागरण की आपको बताती हूँ, पहले पन्ने पर यह खबर है, पाकिस्तान की खबर है, अखबार की हेडिंग है पाकिस्तान ने दागा स्नाइपर शॉट जवान शहीद। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान ने ओपी टावर से ये स्नाइपर दागा है।
जी बहुत शुक्रिया पायल, बहुत शुक्रिया विकास।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब दुनिया जहान, स्पेन का कैटालोनिया प्रांत आजादी की मांग को लेकर चर्चा में है। ऐसी ही मांग इराक के कुर्दिस्तान से भी उठती रही है। दुनिया के कई और हिस्से ऐसे हैं जहां बरसों से अलग देश की मांग की जा रही है। वो क्या कारण हैं जिन्हें लेकर अलगाववाद की भावना उबाल लेती है, और विश्व समुदाय ऐसी मांग के समर्थन और विरोध का फैसला कैसे लेता है? दुनिया जहान में हमारे साथी आदर्श राठौर ने इन्हीं सवालों की पड़ताल की है।
दुनिया जहां ये आवाज है बार्सिलोना की सड़कों में कैटालोनिया को स्पेन से अलग करने की मांग में नारेबाजी कर रहे लोगों की। पिछले साल के आखिर में पूरी दुनिया की निगाहें स्पेन पर टिकी रहीं। ये घटनाक्रम पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि कई देशों के अंदर अलग राष्ट्र की मांग उठती रही है। कहीं पर इस मांग को ताकत के दम पर दबाया जाता है तो कहीं स्वायत्तता और अधिकार देकर मनाया जाता है। कश्मीरी, बलोच, पख्तून और इराकी कुर्द लंबे समय से अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में कई सालों तक तमिल देश के लिए हिंसक संघर्ष चला। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोग अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। चेचनिया में भी अलग देश की मांग कायम है। यूरोप की बात करें तो कैटालोनिया ही आजादी नहीं चाहता। स्कॉटलैंड में भी तबका ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की भावना रखता है। कौन से कारण हैं जिनके चलते लोग हर हाल में अपने लिए अलग राष्ट्र चाहते हैं? क्या वजह है अलगाववाद पनपने की? यूरोपीय राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष पंत बताते हैं कि विकसित और विकासशील देशों में अलगाववाद के उभार की वजहें अलग अलग हैं।
ज्यादातर विकासशील देशों में अलगाववादी मूवमेंट इकोनॉमिक और आइडेंटिटी रिलेटेड होते हैं, और विकसित देशों में इसका ज्यादा एलिमेंट इकोनॉमिक रिजेंटमेंट से होता है।
यूरोप से बाहर निकलें तो अलगाववादी विचारधारा के उभार के कारण भी बदल जाते हैं। यहाँ अलगाववाद की वजह पहचान से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत बताते हैं बहुत से इलाकों में अलगाववाद की जड़ें उपनिवेशवाद के दौर तक जाती हैं।
जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े भूगोल पर कब्जा कर रखा था यूरोप की महाशक्तियों ने, जब ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर आया तो ये प्राकृतिक मानचित्र एक राजनीतिक मानचित्र में कृत्रिम रूप से बदल गया। उसके बाद फिर ये हुआ जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो लोगों को अपनी औपनिवेशिक दास्ता से पहली वाली पहचान का अनुभव हुआ, और आजादी की उस लड़ाई में उनके मन में ललक आत्मनिर्णय की बढ़ने लगी।
विस्तारवाद यानी कब्जा करने की नीति, ताकत के दम पर ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करके शासन चलाने का चलन नया नहीं है। यूनान के सिकंदर महान, मंगोलिया के चंगेज खान और मध्य एशिया के तैमूर लंग से लेकर 20वीं सदी तक विस्तारवाद ने कई बार दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स इरविंग बताते हैं कि 2 विश्व युद्धों में जानमाल के भारी नुकसान के बाद दुनिया के देशों को लगा विस्तारवाद पर रोक लगाने के लिए कुछ सिद्धांत बनने चाहिए।
Self-determination is an attempt to do better than that and to create some kind of justice in the process.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा महसूस किया गया कि लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। ये सभी को न्याय देने के लिए जरूरी था। इसे शुरू में यूएन चार्टर में भी डाला गया था। उस वक्त लोगों को लगा होगा कि ये तो काफी अच्छा विचार है, मगर इसके मायने क्या होंगे, इसे लेकर ज्यादा सहमति नहीं बन पाई।
Delegates representing 46 nations came to San Francisco on April 25, 1945.
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिन सिद्धांतों पर हुई उनमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल था। मगर आज स्थिति क्या है? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अलगाववादी आंदोलनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के किसी नियम का पालन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत कहते हैं,
देखिए मुझे लगता है कि आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कोई कानून तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है, उस चार्टर में कुछ बातें बहुत बहुत सामान्यीकृत कही गई हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, हर विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो उपनिवेश है उनकी समाप्ति होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है उसके बाद दोहरे मानदंड इसमें अपनाए जाते रहे हैं कि अब वो चीन का मामला हो, फार्मोसा वाले ताइवान वाले चीन का और जनवादी चीन का, वो वियतनाम का विभाजन हो, जर्मनी का विभाजन हो, पूरे शीत युद्ध के दौर में कोई भी ऐसी स्पष्ट नीति सैद्धांतिक या ईमानदारी की हमको संयुक्त राष्ट्र में देखने को नहीं मिलती है।
भले ही बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देश दखल नहीं देते, मगर कुछ मामलों में इनका हस्तक्षेप रहता है। उदाहरण के लिए सर्बिया के कोसोवो इलाके ने अलग देश की मांग की थी। सर्बिया ने इस आवाज को दबाने की कोशिश की तो संयुक्त राष्ट्र और नेटो की अगुवाई में सेनाएं कोसोवो की मदद करने पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस डी मुनि कहते हैं ये भी एक कारण है जिससे अलगाववाद की भावना को उकसावा मिलता है।
ये है राइट टू प्रोटेक्ट, कि अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर एथनिक क्लिंजिंग करेंगे, अगर आप लोगों को सामान्य सुविधाएं नहीं देंगे जो सब, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें निकल के आ सकता है। तो इससे भी जो समुदाय है जो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है उनको एक तरह से उकसावा भी मिला है, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर की बात करें।
पिछले कुछ दशकों से अलिखित नियम सा बन गया है कि आप बहुत ही कम मौकों पर दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देंगे, फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस अलिखित नियम का सम्मान नहीं करते। प्रोफेसर एस डी मुनि कहते हैं
देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने हितों पे फैसला करता है, वहाँ कोई नैतिकता के आधार है नहीं। हम कह सकते हैं कि कागजों में लिखा है, संविधान की धाराओं में लिखा है संयुक्त राष्ट्र की कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा जब कोई प्रश्न सामने आता है तो उसका सीधा सवाल ये होता है कि ये करने से मेरा हित होगा कि नहीं होगा। तो रेटरिक्स अलग है, रियलिटी अलग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का।
कई बार ऐसा भी होता है कि संबंध अच्छे न होने पर देश एक दूसरे के यहाँ अलगाववादी ताकतों के उभरने पर उन्हें समर्थन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य क्या है? क्या कभी ऐसा होगा कि अलगाववाद की भावना खत्म हो जाएगी? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे सभी को संतुष्ट किया जा सके? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत कहते हैं
मुझे लगता है कि ये अलगाववाद जो है ये बना रहेगा संसार में हमेशा, क्योंकि हमारी नस्लें एक नहीं है, हमारी भाषाएं एक नहीं है, हमारे धर्म एक नहीं है, और हमारे हित जो राष्ट्र राज्य के थे वो एक नहीं है। तो राष्ट्र राज्य की इकाई अपने राष्ट्रहित को तर्कसंगत साबित करने के लिए बहुमत का सहारा लेती है और अल्पसंख्यक अधिकारों का या उनकी आकांक्षाओं का न कहें हनन उल्लंघन दमन होता रहता है।
यूरोप में 60-70 के दशक में कई अलगाववादी आंदोलन थे मगर वे वक्त के साथ कुंद पड़ गए, मगर जिस तरह से पिछले साल अचानक कैटलोनिया का मुद्दा उभरा उससे लगता है कि इस साल यूरोप में कई इलाकों के केंद्रीय सरकारों से झगड़े उभर कर सामने आ सकते हैं। जानकार मानते हैं कि आर्थिक मंदी का यूरोप के कई देशों पर असर पड़ा है और इससे अलगाववादी ताकतों को नया अवसर मिल रहा है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में रोहिंग्या संकट को लेकर भी पूरी दुनिया की नजरें म्यांमार पर होगी कि वो रखाइन प्रांत को लोकतांत्रिक ढंग से मुख्य धारा में ला पाएगा या नहीं। श्रीलंका में भी तमिल समुदाय को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों की रफ्तार कम हो गई है। नेपाल में मधेसी समुदाय की नाराजगी दूर करने की चुनौती नई सरकार पर होगी और साथ ही भारत में कश्मीर के मुद्दे पर भी सबकी निगाहें होंगी जिससे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है।
आदर्श राठौर की इस प्रस्तुति पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार एक बार फिर विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में आज सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में दोषी करार लालू प्रसाद फिलहाल रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बेनन की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा है कि जब बेनन को नौकरी से निकाला गया तब न सिर्फ उन्होंने अपनी नौकरी खोई बल्कि उनका दिमाग भी फिर गया। ईरानी प्रशासन ने देश में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी का कहना है कि उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सैन्य ताकत लगा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव अभियान के दौरान फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाएगी। मैक्रों के मुताबिक झूठे प्रचार प्रसार से एक उदार लोकतंत्र को बचाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। कंप्यूटर के लिए चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल के कुछ डिजाइन्स में बड़ी खराबी पाई गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।